दिन भर 24 अक्टूबर बुधवार सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। सीबीआई के भीतरी संग्राम में दोनों अफसर छुट्टी पर भेजे गए, कांग्रेस का भाजपा पर आरोप।
अभियुक्त के समर्थन में खड़ी है सरकार, लेकिन एक शब्द लिख के कि मैं इनको लीव पे जाने को कह रहा हूँ, इस सरकार ने उच्चतम न्यायालय को नकार दिया है।
पत्रकार जमाल खशोजी की हत्या के बाद सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका के तीखे बोल।
They had a very bad original concept. It was carried out poorly, and the cover-up was one of the worst.
और दुनिया जहान में सुनिए, भूटान में सत्ता परिवर्तन का भारत पर क्या पड़ेगा असर?
वो अगर हाइड्रो पावर को कम करना चाहते हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज या और कुछ खोलना चाहते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत में अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों समेत कई अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई में अंतर कलह को असाधारण बताते हुए भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने का फैसला केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर लिया गया है। आलोक वर्मा ने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वर्मा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। अभी अभी आ रही एक खबर के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के घर भेजे गए दो संदिग्ध पैकेजों को एफबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया गया है। इनमें विस्फोटक होने की आशंका जाहिर की गई है। मामले की आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के मुद्दे पर समाधान तलाशने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित किया है। यह समूह मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा और इस मुद्दे के समाधान सुझाएगा। यूरोपीय संसद ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और क्रॉकरी के उत्पादों पर समूचे यूरोपीय संघ में प्रतिबंध लगाने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। बेल्जियम के संसद सदस्य फ्रेडरिक रीस ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि जहां विकल्प उपलब्ध हों वहां प्लास्टिक के उत्पादों से बचना चाहिए। यूरोपीय देशों से प्लास्टिक के कपों और कंटेनरों के इस्तेमाल में कटौती के लिए भी कहा जाएगा। यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग और सदस्य देशों के बीच नया कानून बनाने पर चर्चा शुरू होगी, जिसके बाद हर सदस्य देश को अपना राष्ट्रीय कानून बनाना होगा। यूरोपीय संसद में ब्रिटानी सांसद जॉन हॉवर्ट ने कहा,
The scale of the problem is staggering with 8 million tons.
इस समस्या का विकराल स्वरूप हैरान करने वाला है। हर साल 8 लाख टन कचरा समंदर में पहुंच रहा है। ये एक त्रासदी है, लेकिन ठोस कदम उठाकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बेहतर विकल्प तलाशे जा सकते हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक बोतलों का भी फिर से इस्तेमाल संभव हो। नेटो शीत युद्ध के बाद से सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। नॉर्वे पर नकली आक्रमण को रोकने की तैयारी के लिए किए जा रहे युद्धाभ्यास ऑपरेशन ट्रिडेंट की तैयारी के लिए अगस्त से ही भारी हथियार नॉर्वे पहुंच रहे थे। गुरुवार से शुरू हो रहा है इस युद्धाभ्यास में फिनलैंड और स्वीडन के अलावा नेटो के सभी 29 सदस्य देश शामिल हो रहे हैं। इस अभ्यास में 65 लड़ाकू जहाज, 250 लड़ाकू विमान और 50,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। रूस को अभ्यास देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। चीन ने एक बार फिर दोहराया है कि शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के हिरासत केंद्र उनके भले के लिए हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि चीन में 10 लाख से अधिक वीगर मुसलमानों को हिरासत केंद्रों में रखा गया है। बीजिंग में एक प्रेस वार्ता में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चिनयुंग ने कहा, ये एक फायदा पहुंचाने वाला प्रयास है और आतंकवाद और कट्टरपंथ की रोकथाम के कदम उठाने का एक सकारात्मक तरीका है। इसका मकसद समस्या को बढ़ने से रोकना है, बीमारी को खत्म करके मरीज को बचाना है और मानवाधिकारों की आतंकवाद और कट्टरपंथ से रक्षा करना है। नाइजीरिया की वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार देश की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के विकल्प तलाश रही है। एक आर्थिक सम्मेलन में बोलते हुए जैनब अहमद ने कहा कि सरकार नाइजीरिया में बच्चे पैदा करने की संख्या तय करने की नीति पर विचार कर रही है। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐसा किसी बयान देने से इनकार किया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की अंदरूनी कलह अब खुलकर बाहर आ गई है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप के बाद दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। सरकार ने नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया है। उधर आलोक वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और कांग्रेस ने इस मामले को रफाल मामले को दबाने की कोशिश करार दिया है। दिल्ली से सुमिरन प्रीत कौर की रिपोर्ट।
नागेश्वर राव की सीबीआई में बतौर अंतरिम निदेशक नियुक्ति ऐसे वक्त पर हुई है जब सीबीआई के दोनों टॉप अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अस्थाना गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले पर विपक्ष ने उंगली भी उठाई। ये मामला इतना बड़ा कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सफाई पेश की।
ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती और न करेगी। सीबीआई का जो एक्ट है उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स अधिकार है। बड़े अधिकारियों ने भी सीवीसी को ही, जो उनकी कंप्लेंट्स आई सीवीसी को ही गई। सीवीसी के पास वो सारा मटीरियल है जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे हैं। और कल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपनी मीटिंग में सेक्शन 8 सीवीसी एक्ट और सेक्शन 41 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ये सिफारिश की कि इन आरोपों की जांच ना तो ये दो अधिकारी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पे स्वयं आरोप है, और न ही इनकी सुपरविजन में कोई एजेंसी कर सकती।
इस केस में राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच कराने वाले सीबीआई अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, सीबीआई चीफ आलोक वर्मा रफेल घोटाले के कागजात इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से कहा,
अभियुक्त के समर्थन में खड़ी है सरकार, लेकिन एक शब्द लिख के कि मैं इनको लीव पे जाने को कह रहा हूं, इस सरकार ने उच्चतम न्यायालय को नकार दिया है। हम जानते हैं रिमोट कंट्रोल कौन है इन मामलों में, सत्तारूढ़ सरकार के अध्यक्ष, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, एक गलतफहमी में आपके दिमाग से हटा दूं, सीबीसी का पावर कब से हो गया आपको हटाने या आपको नियुक्त करने का?
इस पूरे मामले में विवाद सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त करने और हटाने को लेकर भी है। नियमों के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति और हटाने का अधिकार उस उच्च स्तरीय कमेटी को है जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। प्रशांत भूषण सरकार के इस फैसले को गलत ठहराते हुए कहते हैं,
ये सब जो सारा प्रक्रिया हुई है जो कि बिल्कुल राकेश अस्थाना को बचाने के लिए, और शायद रफाल सौदे में जो हमने कंप्लेंट करी थी सीबीआई को, उसकी जांच ना हो पाए उस वजह से ये सब कराया गया है, और इसको हम लोग चुनौती देंगे। इस बीच में आज ये पता लगा है कि श्री आलोक वर्मा ने खुद ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करी है, और आज वो सुबह मेंशन करी गई और उसकी सुनवाई परसों के लिए, फ्राइडे के लिए लगाई गई।
इस केस में सरकार जहां अपना बचाव कर रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे का फायदा लेने से पीछे नहीं हट रही। फिलहाल जो हालात हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान सीबीआई की साख को होता नजर आ रहा है।
सुमिरन प्रीत कौर से रिपोर्ट सुन रहे थे आप। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। पत्रकार जमाल खशोजी की हत्या के मामले में सऊदी अरब को अब अमेरिका की ओर से भी तलखी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खशोजी की हत्या को गुप्त रखने की कोशिश का सबसे बुरा मामला बताया है। इससे पहले अमेरिका ने इस मामले में 21 संदिग्ध सऊदी अधिकारियों का वीजा भी रद्द कर दिया। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
सऊदी पत्रकार जमाल खशोगजी के कत्ल के मामले में लगता है राष्ट्रपति ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि खशोगजी कत्ल के जिम्मेदार लोगों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये पूरी योजना शुरू से ही बहुत बेकार थी, और फिर उस पर अमल भी बहुत ही बुरे तरीके से किया गया, और उसकी पर्दापोशी तो इतिहास में सबसे बुरी थी। ट्रंप ने आगे कहा कि जिस किसी ने भी इस कत्ल की योजना बनाई थी वो अब सख्त मुश्किल में है और उसे होना भी चाहिए। आज राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीकी खुफिया एजेंसियों की ओर से इस मामले में एक रिपोर्ट भी पेश की जाने वाली है। इस सिलसिले में खुद अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की मुखिया जीना हेस्पल तुर्की गईं और सबूत के बारे में वहां इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकातें की। अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका खशोगजी को हिंसक तरीके से खामोश करने के इस कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा। माइक पोम्पियो ने फिलहाल कुछ सऊदी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया।
We are taking appropriate actions, which include revoking visas, entering visa lookouts, and other measures.
माइक पोम्पियो ने कहा कि अमरीका इस कत्ल के जिम्मेदारों को सजा देगा और इस मामले में लिप्त 21 आरोपियों के वीजे रद्द किए जा रहे हैं और भविष्य में उनके अमरीका में प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा ग्लोबल मैग्निट्स्की कानून के तहत भी इन लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमरीकी विदेश मंत्री के अनुसार इन आरोपियों का संबंध सऊदी खुफिया एजेंसियों, रॉयल कोर्ट और सऊदी विदेश मंत्रालय से है। सऊदी सरकार का कहना है कि सऊदी शाही परिवार की इजाजत के बगैर कुछ अधिकारियों ने खशोगजी के खिलाफ कार्रवाई की थी जिसमें उनकी मौत हुई थी, लेकिन सऊदी हुकूमत की यह सफाई अमरीका में किसी के गले से नहीं उतर रही। अमरीकी कांग्रेस के कई सदस्य और सेनेटर्स सीधे तौर पर सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को खशोगजी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप पर सऊदी शहजादे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए दबाव डाला जा रहा है। अमरीका के एक अहम सेनेटर लिंडसी ग्राहम कहते हैं, सवाल यह है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान इसमें लिप्त हैं? तो जवाब है जी हाँ बिल्कुल। शुरू में सऊदी सरकार ने साफ झूठ बोला, फिर पर्दापोशी की कोशिश की गई। देखिए, अमेरिका और सऊदी के संबंध अहम हैं, लेकिन हमारे संस्कार सबसे ज्यादा अहम हैं। और मैं तो बेहद मायूस हुआ हूँ। सेनेटर लिंडसी ग्राहम के शब्द। 2 अक्टूबर को जमाल खशोगजी इस्तांबुल में सऊदी कौंसुलेट में दाखिल हुए और वापस न आए। उसके बाद से सऊदी हुकूमत ने कई बार अपना बयान बदला। याद रहे कि शुरू में कई दिनों तक सऊदी सरकार ये कहती रही थी कि खशोगजी तो कौंसुलेट से जिंदा बाहर चले गए थे, लेकिन अब भी खशोगजी की लाश के बारे में सऊदी सरकार टाल मटोल से काम ले रही है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशभर में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाने से इनकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ दिवाली पर आतिशबाजी की छूट दी है। दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे के लिए रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके साथ कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है कि त्योहारों में कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखे ही जलाए और बेचे जाने चाहिए। ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, इस रिपोर्ट में बता रही हैं भूमिका राय।
सुप्रीम कोर्ट ने जिन ग्रीन पटाखों की बात की है वो आखिर होते क्या हैं और पारंपरिक पटाखों से वे अलग कैसे होते हैं। दरअसल ग्रीन पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी NIRI की खोज है, जो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं पर उनके जलने से कम प्रदूषण होता है। NIRI एक सरकारी संस्थान है जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन काम करता है। NIRI ने ग्रीन पटाखों पर जनवरी में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के उस बयान के बाद शोध शुरू किया था जिसमें उन्होंने इसकी जरूरत की बात कही थी। ग्रीन पटाखे दिखने, जलाने और आवाज में बिल्कुल आम पटाखों की तरह होते हैं, लेकिन उनसे हानिकारक गैसें 40 से 50% तक कम निकलती हैं। NIRI की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर साधना रायलू बताती हैं,
ग्रीन क्रैकर्स से हम लोग ये मीन करते हैं कि इससे जो एमिशंस होंगे वो कंपैरेटिवली कम होगी जो फिलहाल कमर्शियल या कन्वेंशनल क्रैकर्स से हो रहे हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर है, SO2 है और NO2 है, ये कम होंगे। और ये ग्रीन क्रैकर में हमने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फायर क्रैकर्स बनाए हुए हैं। जो पहला कैटेगरी है उसको हम लोग स्वास कहते हैं। स्वास्थ्य मीन्स सेफ वाटर रिलीजर। इस केस में क्या होता है, जो फॉर्मुलेशन हमने तैयार किए हैं उससे वाटर इवॉल्व होता है, वाटर रिलीज होता है, पानी रिलीज होता है, तो वो डस्ट सप्रेसेंट करके काम करता है और वो एक डाइल्यूएंट करके भी काम करता है SO2 और NO2 के लिए।
NIRI ने 4 तरह के ग्रीन पटाखे बनाए हैं। इसके अलावा स्टार क्रैकर नाम के पटाखों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जलने के बाद सल्फर और नाइट्रोजन कम मात्रा में पैदा होते हैं। इसके लिए खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। साधना रायलू बताती हैं,
हमने ये क्रैकर डेवलप किया है जिसमें अल्यूमिनियम हमने 50 से 60% कम कर दिया है। जो फोर्थ कैटेगरी जो बनाया है हमने वो अरोमा करके बनाया हुआ है। जब हम ये क्रैकर को बर्स्ट करेंगे तो इससे पार्टिकुलेट मैटर डेफिनेटली कम आएगा। इसके अलावा जो सुगंध, इसलिए हमने उसको एरोमा रखा हुआ है कि इससे एक बहुत अच्छा सुगंध भी होगा।
ग्रीन पटाखे फिलहाल भारत के बाजारों में उपलब्ध नहीं है, ये नीरी की खोज है और इसे बाजार में आने में काफी वक्त लग सकता है। इसे बाजार में उतारने से पहले सरकार के सामने इसके गुण और दोष का प्रदर्शन करना होगा, जिसके बाद ही इसे बाजार में उतारने की अनुमति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस ग्रीन पटाखे के बारे में बात कही है, उसका इस्तेमाल दुनिया के किसी देश में नहीं होता है। डॉक्टर साधना कहती हैं कि ग्रीन पटाखे का आइडिया भारत का है और अगर इसे बाजार में उतारा जाता है तो हम दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। भूमिका राय, बीबीसी, दिल्ली।
भारत और चीन जैसे दो बड़े और शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच हिमालय की गोद में बसे छोटे से देश भूटान में हाल ही में संसदीय चुनाव संपन्न हुए हैं। 8 लाख की आबादी वाले भूटान में अब तक 3 संसदीय चुनाव हो चुके हैं और तीनों बार अलग अलग पार्टियां सत्ता में आई हैं। पिछले 2 संसदीय चुनावों की तरह इस बार भी नई पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला है। इसमें नई सेंटर लेफ्ट पार्टी DNT ने 47 में से 30 सीटें जीती हैं। इस सत्ता परिवर्तन का भूटान की आंतरिक राजनीति और इसके पड़ोसी देशों खासकर भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, इसी की पड़ताल कर रहे हैं हमारे सहयोगी आदर्श राठौर इस बार दुनिया जहान में।
दुनिया जहान। भारत और चीन जैसे दो बड़े और शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच हिमालय की गोद में बसा है छोटा सा देश भूटान। स्थानीय भाषा में भूटान का नाम है द्रुक्युल, यानी उड़ने और आग उगलने वाले ड्रैगन का देश। खास बात यह है कि कई सदियों तक भूटान बाकी दुनिया से कटा रहा। यह कभी किसी का उपनिवेश भी नहीं रहा। बाहरी दुनिया की बहुत कम चीजों और बातों को इसने अपनाया और अपनी संस्कृति और परंपराओं की ये रक्षा करता रहा। लेकिन 19वीं सदी में यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात के बाद 1907 में वांगचुक वंश सत्ता में आया, जिसने देश को एकजुट किया। इसके बाद से लेकर भूटान में लगभग 100 सालों तक पूर्ण राजशाही रही, लेकिन 2006 में सत्ता संभालने वाले जिग्मे खेसार नामग्येल वांगचुक ने 2008 में यहां दो पार्टियों वाले संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व सदस्य और सिक्किम यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर प्रोफेसर महेंद्र पी लामा बताते हैं कि यहां की चुनाव प्रणाली थोड़ी अलग है।
हमारी जैसी सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन भी है, वहाँ पे चुनाव आयोग है, सभी सिस्टम हुई है, लेकिन इन लोगों ने एक अपने लिए एक शर्त रखा कि खास इलेक्शन होगा वो दो पार्टी के आधार पे होगा, है ना। और जितने भी पार्टी कंटेस्ट करना चाहते हैं वो एक प्राइमरी इलेक्शन होगा, उसमें बुनियादी इलेक्शन में और वो कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग ने 4-5 जितने भी पार्टी है सभी को बोला आप कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो दो पार्टी है फाइनल वो ही मेन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो इस बार इनका तीसरा इलेक्शन हुआ, 2008 में हुआ, 2013 में और 2018 में अभी खत्म हुई।
हाल ही में भूटान के तीसरे संसदीय चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें द्रुक न्यामरूप त्शोंगपा यानी DNT ने 47 में से 30 सीटें जीती हैं। ये वही पार्टी है जो 2013 में हुए पिछले चुनावों में पहले ही दौर में बाहर हो गई थी। रोचक बात यह है कि पिछली बार सत्ता में आने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP इस बार पहले ही दौर में बाहर हो गई। इसी तरह से पहले चुनावों में PDT सत्ता में आई थी, मगर अगले ही चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। यानी अब तक हुए 3 अलग अलग चुनावों में 3 अलग अलग पार्टियों को जनता ने चुना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है जो बार बार भूटान की जनता नई पार्टी को चुनती है। ऐसा क्यों है कि सत्ता में रहने वाली पार्टियों को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है। दक्षिण एशिया के मामलों की गहरी समझ रखने वाले प्रोफेसर SD मुनि बताते हैं कि इसमें जनता का असंतोष भी रहता है और कहीं ना कहीं राजा की भी थोड़ी भूमिका रहती है।
देखिए, वहाँ की जो जनतंत्र है वो राजा ने दिया है, लोगों ने मांगा नहीं था और न लोग अभी भी उससे बहुत खुश लगते हैं, इसलिए वो बदल बदल के देखते रहते हैं कि कौन सी सरकार ठीक रहेगी। एक मैं समझता हूँ कि जो राजतंत्र ने दिया है ये, वो भी ये देखना चाहते हैं कि किस तरह के लोग वास्तव में भूटान को स्थायी बना सकेंगे और उसकी प्रगति कर सकेंगे। तो ये दोनों बातें हैं जो मिल के शायद इस तरह के नतीजे पैदा कर रही है। लोगों को पूरा संतोष नहीं होने के कारण हर बार वो बदल देते हैं, लेकिन उसमें राजा का बरदस्त जरूर रहता है।
भूटान में साल 1999 तक TV नहीं आया था। कई सालों तक देश ने खुद को अलग थलग रखा। इसे लगता था कि बाहरी दुनिया यहाँ की राजशाही और संस्कृति को कहीं तबाह न कर दे। यहाँ इंटरनेट भी 1999 में आया। प्रोफेसर महेंद्र पी लामा बताते हैं कि इसके बाद लोगों को समझ आया कि बाहर की दुनिया में विकास क्या है, और इससे ही भूटान की जनता की उम्मीदें भी बढ़ी हैं।
ये जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम आया, इंटरनेट आया, ये आया, उसने लोग का जो चाहना है ना, इसको काफी हद तक बढ़ा दिया कि देखा लोग ने कि अरे विकास में ऐसे होते है, स्कूल इस तरह से बना जाता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सिस्टम, हॉस्पिटल ये होना चाहिए, देखा ही नहीं था, अब देखने लगे। जो राइजिंग एस्पिरेशंस है ना लोग का, लोग जो चाहते वो चाहना ही लोग में, पूरा चाहने में ही रूपांतरण आ गया। छोटा छोटा सोचते थे, मांगते थे, लेकिन अब देखा कि नहीं, डीएनटी का जो मैनिफेस्टो था उसमें ऐसे ऐसे चीज है जो आपको लगता है कि इलेक्शन दिल्ली में हो रहा है, इलेक्शन राजस्थान में हो रहा है, जो हम लोग सोचते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का यहाँ पे होते, वो सब यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिक अम्यूनिटीज भी अभी लोग के पास नहीं है दूर दराज इलाके में।
इस बार के चुनावों में बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे छाए रहे, लेकिन जीतने वाली डीएनटी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये भी कहा कि वो अपने देश को विदेशी कर्ज से मुक्त कराने की दिशा में काम करेगी। भूटान के विदेशी कर्ज का 80% से ज्यादा हिस्सा हाइड्रो पावर फाइनेंसिंग से है और ये ज्यादातर कर्ज भारत का है। तो क्या डीएनटी के सत्ता में आने के बाद उसके रुख से भारत और भूटान के संबंधों पे कोई असर पड़ सकता है? प्रोफेसर एसटी मुनी बताते हैं कि थोड़ा असर तो जरूर पड़ेगा।
इसका प्रभाव अगर वो अपने इकोनॉमिक एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं तो पड़ेगा। इकोनॉमिक एजेंडा का माने कि वो अगर हाइड्रो पावर को कम करना चाहते हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज या और कुछ खोलना चाहते हैं तो उसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो आमतौर से नहीं जिसकी चर्चा होती है, वो ये है कि हाइड्रो पावर लगातार महंगा हो रहा है। जो पहले बहुत लगाव था हाइड्रो पावर के लिए वो धीरे धीरे कम हो रहा है, भारत में अवश्य रूप से कम हो रहा है, और इसकी चिंता भी है भूटान को कि अगर ये कम हो जाए तो उनकी इकोनॉमी का आधार क्या रहेगा। ये भी वजह है कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो अगर उनका इकोनॉमिक एजेंडा इस ढंग से चलता है तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज लगेगी उसमें भारत शामिल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो अभी का माहौल है, जो ढांचा है आर्थिक संबंधों का दोनों देशों के बीच में, उस पर जरूर असर आएगा।
भूटान में चिंता सिर्फ भारत के निवेश को लेकर नहीं है। प्रोफेसर महेंद्र पीलामा बताते हैं कि उसे इस निवेश के जरिए बनाए गए पावर प्रोजेक्टों से बनी बिजली के सही दाम नहीं मिल रहे।
तो ये लोग दो डिमांड करते हैं अभी कि हमको आपका मार्केट से बाहर कोई भी अगर लेना चाहते हैं वो मार्केट दे दीजिए और टैरिफ का रेट बढ़ा दीजिए। और दोनों मैं भी थोड़ा बहुत देखता हूँ ये सब हिसाब किताब, तो लगता है कि ये दोनों मांग इनका जायज मांग है।
लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर भूटान की संसद के पास अधिकार कितने हैं? अगर संसद का दखल है भी तो क्या चुनाव प्रचार के दौरान भारत के प्रति थोड़ा कड़ा रुख रखने वाली डीएनटी इस दिशा में सत्ता में आने के बाद कुछ करेगी? प्रोफेसर एसडी मुनी,
डीएनटी जीती है, उस जीतने में उनको ज्यादा वोट पीडीपी के मिले हैं जिसको भारत मुखी कहा जाता है, इसीलिए उनका जो इलेक्शन प्रोपेगेंडा कुछ भी रहा हो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनको ये भी पता है कि उनका जो वोट बैंक हो गया है नया, उसमें भारत मुखी लोगों का ज्यादा समर्थन है।
रणनीतिक रूप से बेहद अहमियत रखने वाले भौगोलिक क्षेत्र में होने के कारण भूटान कई बार भारत और चीन की रस्साकशी के बीच भी फंसता रहा है। दक्षिण एशिया में भारत और चीन की आपसी होड़ किसी से छिपी नहीं। पिछले साल डोकलाम में भारत और चीन के बीच गतिरोध भी बना हुआ था। ऐसे में नई सरकार का रुख इस तरह के मामलों पर क्या होगा? प्रोफेसर महेंद्र पीलामा बताते हैं कि अब ये बात साफ हो गई है कि भारत और भूटान के संबंध परंपरागत ढंग से नहीं चलेंगे।
भूटान में काफी परिवर्तन आया है, यंग लोग आए हैं, नया ब्यूरोक्रेट आए हैं, एक नया पीढ़ी आए है राजनीति में भी। ये लोग का सोच जो 60 का दशक में, 80 का दशक में था, उससे काफी हद तक फर्क है, और इसको अगर भारत ने ठीक तरह से नहीं संभाला तो काफी हद तक रिलेशंस में तनाव भी आ सकती है। और चीन बहुत कोशिश कर रही है भूटान में जाने के लिए, तो देखा है आपने मालदीव्स में जब चीन गया, फर्स्ट एम्बेसी बनाया, उसके बाद कितना तनाव आ गया वहाँ पे। कूटनीतिक हिसाब से, पीपल टू पीपल का हिसाब से भारत सरकार को काफी हद तक लिबरल होना चाहिए। भूटान का जो मर्म है, लोग जो सोचते, लोग जो चाहते, उसको समझना चाहिए।
जानकारों का कहना है कि भूटान की नई सरकार की प्राथमिकता अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा और संप्रभुता को और मजबूत करने पर रहेगी। उनका ये भी कहना है कि लोकतंत्र आने के बाद आज के भूटान में 90 के दशक के मुकाबले बहुत फर्क आ गया है। लोग विकास को प्राथमिकता देने लगे हैं और विकास होता नजर भी आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ लोकतंत्र शुरुआती दौर में है और इसे जड़ें गहरी करने में और परिपक्व होने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा।
आज का दुनिया जहान आपको कैसा लगा हमें लिखिएगा जरूर। और अब खेल की खबरें। आज विशाखापट्टनम के मैदान पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर वो एक दिवसीय खेलों में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट ने 205 वनडे पारियों में ये कारनामा किया। सचिन तेंदुलकर ने 259 पारियों में 10,000 रन बनाए थे। इस मैच में विराट ने 129 गेंदों पर 157 रनों की पारी खेली। मैंने संपर्क किया विराट कोहली की बायोग्राफी ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी लिखने वाले खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली से और पहले उनकी पहली प्रतिक्रिया पूछी।
मेरा पहला रिएक्शन यही होगा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अगर आप देखें उसका करियर ग्राफ, जब से वो अंडर 17 खेलना शुरू किया है तब से ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्कोर बनाए हैं, और ये एक क्वालिटी इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली बनाए हैं। अगर आप देखें अंडर 17, अंडर 19, जहाँ से फिर वो चमक के इंडियन टीम में आए, और जब से इंडियन टीम में आए शुरुआत में थोड़ा सा लड़खड़ाई उनकी बैटिंग, तो उसके बाद जो उन्होंने अपना जो कैरियर संजोया है, और आज आप देखिए कप्तान हैं, पूरी दायित्व अपने शोल्डर्स पे लेते हैं और ऐसे रन बनाते हैं जैसे कि वो 100 रन तो मुझे लगता है वो ड्रेसिंग रूम से ही बना के आते हैं।
विराट कोहली के खेल में ऐसी करामात क्या है जो उन्होंने ये कारनामा किया? क्या अलग है उनके खेल में जो उन्हें दूसरे समकालीन क्रिकेटरों से अलग करता है?
सबसे मेन अगर आप मैं कहूंगा कि उनकी कंसिस्टेंसी, जो मैंने आपको कहा कितने कॉन्फिडेंस से बैटिंग करते हैं, एक दूसरा बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने किसी भी स्टेज पे अपने प्रैक्टिस को उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, अपनी ट्रेनिंग को उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, अपनी खाने की आदतें उन्होंने बदल दी, फिटनेस पे इतना जोर दिया है कि आज टीम में वो एक एक तरीके से एक बेंचमार्क है। और एक चीज और जो उनकी बैटिंग में, वो ये कि वो फियरलेस।
दुनिया के जो महानतम बल्लेबाजों की दौड़ है जिसमें अब से कुछ समय पहले तक लोग विराट कोहली का नाम थोड़ा हिचक के साथ लेते थे, अब आपको लगता है कि उस दौड़ में विराट कोहली बाकी महान बल्लेबाजों से थोड़ा आगे दिख रहे हैं? अभी बढ़त बना ली उन्होंने।
जो आज की क्रिकेट है, जो जितने खिलाड़ी आज खेल रहे हैं उनमें तो बहुत आगे हैं वो। उन्होंने जो रूट को पीछे छोड़ दिया है, उन्होंने केन विलियमसन को पीछे छोड़ दिया है, डिविलियर्स तो अब खेलते नहीं है टेस्ट क्रिकेट, उनको भी पीछे छोड़ दिया है, पर जहां तक कि क्रिकेट हिस्ट्री में अभी उनको बहुत कुछ आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। मैं कहूंगा अभी तो आधी स्टेज पे भी नहीं पहुंचे हैं वो। अपने आप को उनकी जैसी फिटनेस है मुझे नहीं लगता अगले 5 साल में कोई उनको रोक पाएगा।
ये थे खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली। आपको बता दें कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के सामने 322 रनों का लक्ष्य रखा है और जवाब में वेस्टइंडीज की टीम शुरुआती झटकों के बाद संभल गई है। पिछले मैच के शतकवीर खब्बू बल्लेबाज 21 वर्षीय शिमरोन हैथमेयर आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 75 रन बना चुके हैं और उनका साथ दे रहे हैं SD होप। और इसी तरह वेस्टइंडीज की होप उम्मीदें बनी हुई हैं। 28 ओवर में 187 रन वेस्टइंडीज की टीम बना चुकी है, भारत को विकेट की तलाश। कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए दिलनवाज पाशा से।
भारत में अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के 2 शीर्ष अधिकारियों समेत कई अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के मुद्दों का समाधान तलाशने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित किया है। ये समूह मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा और इस मुद्दे के समाधान सुझाएगा। यूरोपीय संसद ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और क्रॉकरी के उत्पादों पर समूचे यूरोपीय संघ में प्रतिबंध लगाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। नेटो शीत युद्ध के बाद से सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। नॉर्वे पर नकली आक्रमण को रोकने की तैयारी के लिए किए जा रहे युद्धाभ्यास ऑपरेशन ट्रिडेंट की तैयारी के लिए अगस्त से ही भारी हथियार नॉर्वे पहुंच रहे थे। और ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के सभी संदिग्धों पर उनकी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। BBC समाचार,
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया अजीत सारथी ने। अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति और बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।